नमस्कार भारत, तारीख 3 अगस्त, दिन बुधवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। भारत के विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह जेद्दा पहुंच रहे हैं सऊदी अरब में फंसे भूखे बेरोजगार कामगारों की मदद के लिए।
कॉन्सुलेट की इंटरवेंशन से हाथ पहुंचा दिया गया है, लेकिन तनख्वाह तो अभी तक मिला नहीं है। तो सऊदी ऑफिशियल से भी मुलाकात की है, तो इनका रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव है।
माओवादी नेता प्रचंड का नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनना तय।
प्रधानमंत्री की प्रत्याशी सिर्फ प्रचंड है, और जो अभी की सत्तारूढ़ नेतृत्व कर रही थी UML, वह अपने उम्मीदवार नहीं दिया है, इसलिए प्रचंड प्रधानमंत्री बन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा होगा दर्ज। लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, मानसी दास से। भारतीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह सऊदी अरब में फंसे हुए 10,000 से अधिक कामगारों की मदद के लिए जेद्दा पहुंच रहे हैं। ये कामगार नौकरी खत्म होने के बाद सऊदी अरब में फंसे हैं। जेद्दा में मौजूद भारतीय वाणिज्य दूत ने BBC को बताया कि वो सभी कामगारों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में उन्हें भारत वापस ले जाने की उम्मीद भी है। उनका कहना है कि दक्षिण एशिया के कई और देशों के कामगार भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं। सीरिया के एक शहर सराके में एक डॉक्टर और बचाव कर्मियों का कहना है कि वहां पर कथित तौर पर क्लोरीन गैस से भरे बैरल गिराए गए हैं। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। यह हमला इदलिब प्रांत के सराके में हुआ, जहां विद्रोहियों ने रूसी सेना का मालवाहक हेलीकॉप्टर मार गिराया था। घटना में करीब 30 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं हैं। स्वयंसेवी बचाव कर्मियों के समूह सीरिया सिविल डिफेंस के एक प्रवक्ता ने बताया,
Yesterday at 11:20 p.m., a helicopter dropped 2 baller bombs on Saraqib.
कल स्थानीय समयानुसार 11:20 पर एक हेलीकॉप्टर ने सराकेब में रिहायशी इलाके में 2 घरों पर बैरल बम गिराए। इनमें क्लोरीन थी और लोहे के छर्रे थे। हम एम्बुलेंस की व्यवस्था कर पाए और हमने 33 लोगों को बचाया। ये सभी घायल थे, इनमें 18 महिलाएं और 10 बच्चे थे। सभी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ये थे सीरिया सिविल डिफेंस समूह के प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा है कि वे इस पद के लिए योग्य नहीं हैं। ओबामा ने सवाल किया कि रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप की उम्मीदवारी का समर्थन क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले रिपब्लिकन उम्मीदवारों की तुलना में ट्रंप में दुनिया के सबसे ताकतवर पद पर बैठने के लिए ना तो फैसले लेने की क्षमता है और ना ही स्वभाव है। ट्रंप ने इसका जवाब देते हुए ओबामा पर नाकाम नेता होने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी प्रतिद्वंदी हिलरी क्लिंटन किसी भी सरकारी विभाग के लिए योग्य नहीं है। लीबिया में सुरक्षा बलों का कहना है कि बेंगाजी शहर में एक कार बम धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। यह धमाका देश के पूर्व में ग्वारशा जिले के एक रिहायशी इलाके में हुआ, जहाँ हाल में कई गुटों के बीच लड़ाई चल रही थी। हमला लीबियाई सरकार के समर्थन में अमरीकी सेना के हवाई हमलों के एक दिन बाद हुआ है। माना जा रहा है कि इस धमाके में सरकार का समर्थन करने वाले सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया है। मिस्र में जन्मे अमरीकी वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता अहमद जवेल का अमरीका में देहांत हो गया है। वे 70 साल के थे। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, भारत के विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह सऊदी अरब में फंसे हुए भारतीय कामगारों की मदद के लिए जेद्दा पहुंच रहे हैं। ये कामगार नौकरी खत्म होने के बाद से ही वहां फंसे हुए हैं। सऊदी अरब के निर्माण उद्योग से जुड़े कई लोगों को नौकरी से निकाला गया है और कामगारों का आरोप है कि उन्हें वेतन नहीं दिए गए और सिर्फ खाना ही दिया जा रहा है। खाड़ी देशों में भारत के पूर्व राजदूत रहे केसी सिंह कहते हैं कि इस तरह दूसरे देशों में कामगारों का फंसना कोई नई बात नहीं है।
दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑल्दो आई थिंक द immensity of the problem will probably be greater.
KC Singh keh rahe the ye pehli baar nahi ho raha, halanki mujhe lagta hai ki is baar ye samasya shayad bahut gambhir hai. Aarthik samasya bhi badi hai aur Saudi Arab mein sthaniya jansankhya bhi adhik hai. वो मुहैया कराई गई सब्सिडी हटा रहे हैं. हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने के बाद ये समस्या पूर्व में हुई समस्याओं से अधिक बड़ी हो जाएगी. लेकिन आखिर में आपको अपने लोगों को वापस लेकर आना ही होगा. लेकिन हमें सऊदी सरकार पर भी दबाव बनाना होगा कि वो कुछ करे. ये थे केसी सिंह के शब्द. हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने कौंसुलेट जनरल नूर रहमान से पूछा कि फिलहाल वहाँ स्थिति क्या है और इन लोगों के लिए आगे क्या इंतजाम किए जा रहे हैं.
ये जो एक कंपनी है सऊदी ओजर कंपनी, इसमें तकरीबन 2000 हिंदुस्तानी वर्कर्स थे. इनको 7 महीने का तनख्वाह नहीं मिल रहा था और कुछ तरीके से खाना भी नहीं मिल रहा था. तो खैर खाना तो हम कम्युनिटी की मदद से और हमारे कॉन्सुलेट की इंटरवेंशन से खाना तो पहुंचा दिया गया है, लेकिन तनख्वाह तो अभी तक मिला नहीं है. तो अब इसमें ये हुआ है कि जो सऊदी ऑफिशियल से भी मुलाकात की है तो इनका रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव है और इनका कहना यह है इस कंपनी के जो लोग हैं, जो वर्कर्स है जो जाना चाहते हैं इंडिया, तो उस पर यहाँ पर एग्जिट लगना पड़ता है पासपोर्ट पे, तो उस पर ये लोग लगाएंगे सरकार की तरफ से. और जो लोग यहाँ पर दूसरे कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो ट्रांसफर कराने में सऊदी गवर्नमेंट जो है उसमें मदद करेंगे. तो ये सब चीजें हैं. तो अभी ऐसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त हमारे जो ऑफिशियल्स है, कई सारे ऑफिशियल्स मैंने कैंप्स में तैनात किए हैं. जो लोग फौरी तौर पे जो हिंदुस्तान वापस जाना चाहते हैं और जो लोग यहाँ रुकना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारे जो हज की जो फ्लाइट है जो हिंदुस्तान की जो आएंगे वो परसों से आना शुरू हो जाएंगे. तो फ्लाइट की जो वापसी जो होता है वो फेरी फ्लाइट होते हैं जो खाली चले जाते हैं हाजी को यहाँ आने के बाद. तो उस फ्लाइट में जो है ये जो वर्कर्स है जो वापस जाना चाह रहे हैं, इन लोगों को वापस भेजने की कार्रवाई है. तो लेकिन उसमें एक जो है कि यहाँ पर अथॉरिटीज के परमिशन वगैरह चाहिए होता है.
तो ऐसे कितने लोग होंगे जो वापस जाना चाहते हैं और क्या जो रुकना चाहते हैं उन सब लोगों को कहीं ना कहीं कोई काम मिल जाएगा?
कई लोग हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन जो इनकी जो ड्यूज है, जो तनख्वाह जो अभी तक जो मिलना था 7 महीने के और जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट वगैरह है वो सब मिलने के बाद कई लोग जाना चाहते हैं. मेजोरिटी वैसे लोग हैं. और दूसरे लोग हैं जो एकदम जाना चाहते हैं और ये जो इनकी डीज वगैरह है क्लेम करके जब भी आए तो उनको इंडिया में जब पहुंचने के बाद भी ट्रांसफर के लिए तैयार है. और जो बाकी जो लोग यहाँ रुकना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंपनीज सामने आए हैं, हमारे कॉन्सुलेट को अप्रोच की है, उन्होंने ऑफर दिया है कि तकरीबन 1500 लोग तो जो है हमको लगता है कि आराम से ट्रांसफर हो सकते हैं.
वास्तव में हुआ क्या था रहमान साहब जिसकी वजह से अचानक से इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए?
तकरीबन जनवरी से शुरू हुआ है. एक तो खैर जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन और क्योंकि ऑयल की जो प्राइसेस वगैरह की जो मसला है जो काफी नीचे चला गया था, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है ऑयल पे काफी डिपेंडेंट है इनकी करेंट, तो एक तो वो था. और दूसरा ये कि ये कुछ बड़े कंपनी, एक तो ये सऊदी ओजर कंपनी है जो मतलब लास्ट ईयर के दिसंबर तक बहुत सही चल रहा था और जनवरी से शुरू हुआ ये सब मुश्किल जो आई है. और दूसरा कंपनी है सऊदी बिन लादेन कंपनी, उसमें भी दिक्कतें रहे हैं. लेकिन सऊदी ओजर में ये हुआ, एक तो तनख्वाह लगातार जनवरी से कंपनी ने नहीं दिया और फिर खाना भी बंद कर दिए और जो कंपनी के जो लोग थे मतलब ऑफिस बंद करके चले गए और मतलब कोई हमारे जो मेल या फोन या जो भी चीजें हैं उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. तो जब ऑफिस ही बंद हो गए तो ऑब्वियसली एक पैनिक सिचुएशन था हुआ कि भाई.
निखिल रंजन बात कर रहे थे कौंसुलेट जनरल नूर रहमान से जो कि बता रहे थे कि फिलहाल वहां पर कामगारों की क्या स्थिति है. रुख नेपाल का करते हैं. नेपाल में नए प्रधानमंत्री के लिए माओवादी नेता पुष्प दहल कमल उर्फ प्रचंड ने पर्चा भर दिया है. प्रधानमंत्री पद के लिए वो अकेले प्रत्याशी हैं इसलिए उनके चयन में कोई समस्या नहीं, लेकिन नेपाली कांग्रेस और मधेसी समुदाय के साथ अभी बहुत सारी बातें तय होनी बाकी हैं. हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने ही नेपाल में वरिष्ठ पत्रकार चंद्र किशोर से पूछा कि प्रधानमंत्री पद की ओर बढ़ते प्रचंड की राह में क्या मुश्किलें पेश आ सकती हैं.
कोई उनको सदन की गणित से कोई बाधा नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की प्रत्याशी सिर्फ प्रचंड है और जो अभी की सत्तारूढ़ नेतृत्व कर रही थी UML वह अपने उम्मीदवार नहीं दिया है, इसलिए प्रचंड प्रधानमंत्री बन रहे हैं.
आपने प्रचंड का पहला कार्यकाल भी देखा होगा, वो किस तरह के प्रधानमंत्री, मेरा मतलब है कि क्या उम्मीद की जा सकती है नेपाल के लिए?
उस समय 2-3 बातें थी. उस समय प्रचंड का काफी बहुमत था और सदन के भीतर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी. माओवादी सशस्त्र संघर्ष से शांति प्रक्रिया में आया हुआ बहुत कम समय हुआ था, इसीलिए उनमें एक प्रकार का अहम था कि मैं एक परिवर्तनकारी शक्ति हूँ, मैं ही इस देश को आगे ले जा सकता हूँ। आज उसमें काफी बदलाव आई है, स्वयं प्रधान जी स्वीकार करते हैं कि मुझे परिपक्वता आई है, सूझबूझ बढ़ा है और जो देश के भीतर की राजनीतिक शक्तियां हैं उनके अस्तित्व को भी मैं एक इनकार नहीं कर सकता हूँ, यह एक भावना बड़ी है। दूसरी, भारत को हम इंगेज करके ही हमारी सरकार लंबी समय तक रह सकती है, इसलिए भारत को इंगेज करना जरूरी है। पहली बार कार्यकाल में वो भारत से भी कहीं ना कहीं एक दूरी बनी थी और जब नेपाल की थाई सत्ता के रूप में सेना है उसमें भी उन्होंने बदलाव लाने की कोशिश की थी। इस बार इस तरह की कोई छेड़छाड़ भारत के साथ संबंध हो या देश के भीतर की अंदरूनी जो संरचना है उसमें वो कोई परिवर्तन लाना चाहेंगे।
प्रचंड की जो ये सरकार जो बनने वाली है कितने दिन चल सकेगी?
देखिए, यह सरकार अभी अभी जो जिस हालात में यह सरकार बनी है यह 6 महीना तक का इसका कहा जा सकता है, क्योंकि जो नेपाली कांग्रेस के साथ इनकी जो मिली है तालमेल और एक अंदरूनी बात यह है कि आने वाले दिनों में नेपाली कांग्रेस को हैंड ओवर करना है सत्ता, तो इन लोगों के बीच में आपसी भद्र सहमति के अनुसार सत्ता हस्तांतरण किस तरह से करते हैं, कितने महीनों के बाद करते हैं, तो नेपाली कांग्रेस और माओवादी केंद्र जो अभी प्रचंड जिसके नेतृत्व कर रहे हैं इनकी आपसी तालमेल सरकार संचालन में किस तरह से बढ़ती है, और जो अभी सत्ता से बाहर आई है दल जो वामपंथी दल है उनके साथ आने वाले दिनों में क्या संबंध रहता है, इस पर प्रचंड की भविष्य निर्भर करती है। दूसरी, मरहेज को किस तरह ये विश्वसनीय रूप से इंगेज कर सकते हैं, वहां से सड़क से संघर्ष हो सकता है, ये दो चीजों पर इनकी सरकार की भविष्य है।
क्या लगता है कि प्रचंड जो है वो अपने सहयोगियों को साथ लेकर चल सकेंगे?
पहले से इनमें सूझबूझ आई है, इनको अपने राजनीतिक शक्ति का एहसास हुआ है, इसलिए इनको लगता है कि हम बाकी राजनीतिक शक्तियां हैं अगर उनसे हम जुड़ कर नहीं चले तो दिक्कतें होंगी, और खास करके नेपाली कांग्रेस जिसके सहयोग से दिल्ली में 12 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ था और माओवादियों को सशस्त्र संघर्ष से मुख्य धारा की राजनीति में आने में बल पहुंची थी, उसका तार्किक निकास होना है। सशस्त्र संघर्ष के दौरान के समय में जिस तरह से लोग मारे गए थे उन पर मुकदमे चल रहे हैं उसका एक निपटारा होना है, राजनीतिक रूप से समाधान ढूंढा जाना है, नहीं तो बहुत सारे लोग मानवाधिकार के हनन के कारण से दंडहीनता के शिकार होंगे और उसके लिए एक आयोग बनाई गई है सत्य निरूपण, इसमें राजनीतिक निर्णय की जरूरत है, तो नेपाली कांग्रेस को साथ लेकर जाना इनकी बाध्यात्मक अवस्था है।
प्रचंड की चुनौतियों का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार चंद्र किशोर।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत, रुख भारत का करते हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम के कथित घोटाले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पूरे 1 साल बाद राज्य सरकार को इन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि 36,000 करोड़ के इस घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी शामिल हैं। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
पिछले साल फरवरी में छत्तीसगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो ने 28 ठिकानों पर छापा मारकर नागरिक आपूर्ति निगम के अफसरों और कर्मचारियों के घरों से कई करोड़ रुपए नगद बरामद किए थे। इस मामले में सरकार ने नागरिक आपूर्ति निगम यानी नान के 18 अधिकारियों को निलंबित भी किया था, इसमें से अधिकांश अभी भी जेल में हैं। इस मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारियों डॉक्टर आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली केंद्र सरकार ने नियमानुसार इन दोनों अफसरों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की अनुमति देने में पूरे 1 साल लगा दिए। कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि यह सब आरोपियों को बचाने के लिए किया गया।
11 फरवरी को ACB ने छापे मारे थे नान में, लेकिन 2 IAS अधिकारियों के अभियोजन की अनुमति अब मिली है। क्या कर रहे थे नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के चेले रमन सिंह की सरकार के लोग, जो बात जीरो टॉलरेंस की करते हैं, जो बात ना खाऊंगा ना खाने दूंगा करते हैं, और इन खाने वालों को, इन भ्रष्ट अधिकारियों को इतने दिन खुला घूमने दिया गया? क्या साक्ष्यों को लीपापोती करने के लिए इनको इतने दिन बाहर रहने की छूट दी गई? ये सबसे बड़ा सवाल है।
असल में कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही है कि 36,000 करोड़ रुपए के इस कथित घोटाले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके रिश्तेदार शामिल हैं। यहां तक कि एंटी करप्शन ब्यूरो के मुखिया मुकेश गुप्ता ने आरोपियों से एक डायरी बरामद करने का दावा किया था और मामले की जांच को लेकर अपनी असमर्थता भी जता दी थी।
काफी बड़े पैमाने के जब भ्रष्टाचार होते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि उसके पूरे पूरे भ्रष्टाचार के हर डायमेंशन को हम खोल सकें। कुछ जगह हम खोल सकते हैं, कुछ जगह हम जानते हुए भी असमर्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस डोमेन में इन्वेस्टिगेशन पहुंच जाता है जिसमें हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते।
जाहिर है कांग्रेस पार्टी इन्हीं डायरियों और बयानों को आधार बनाकर राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह को घेरती रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल कहते हैं,
जो डायरी पकड़ी गई है उसमें बार बार मुख्यमंत्री का निवास, मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के निवास स्थान का नाम, ये हर पन्ने में उल्लेख है। तो मुख्यमंत्री इसमें सीधी सीधी संलिप्त हैं, इस कारण से वो सीबीआई जांच से बचना चाह रहे हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक श्रीचंद सुंदरानी कांग्रेस के आरोपों को झूठा बताते हैं।
निश्चित रूप से कांग्रेस दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, अलग अलग आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करने की साजिश है। जिस दस्तावेज की कांग्रेस बात कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री जी के परिवार पे आरोप लगाने की बात कर रही है, निश्चित रूप से कुटरचित दस्तावेज है, उनको कोई तथ्यात्मक बात नहीं है, न ही चार्जशीट में उन बातों का उल्लेख है।
मामला फिलहाल अदालत में है और स्थानीय अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक इस कथित घोटाले के कई मुकदमे अपनी रफ्तार से चल रहे हैं। लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि मुकदमे की सुनवाई की रफ्तार में तेजी आएगी। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
और अब कार्यक्रम में वक्त है कि अखबार की सुर्खियां सुनी जाएं। मानसी, आप अखबार पलट चुकी हैं, बताइए क्या कह रहे हैं अखबार।
कांग्रेस की रैली थी बनारस में और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बनारस गई थी, लेकिन वहां उनकी तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें हवाई एम्बुलेंस के जरिए वापस दिल्ली लाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीला दीक्षित से फोन कर उनका हालचाल जाना। इस खबर को द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदी और अंग्रेजी के लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर के अनुसार आज सभी की निगाहें राज्यसभा पर टिकी होंगी, जहां गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल यानी जीएसटी बिल पेश हो सकता है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इसका समर्थन कर सकती है। बता दूं कि इस बिल की नींव 16 साल पहले वाजपेयी सरकार ने रखी थी। अंग्रेजी के अखबार दी हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर जिक्र है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के छुट्टी पर जाने का। अखबार के अनुसार केजरीवाल काम से 10 दिन की छुट्टी लेकर उत्तराखंड के धर्मशाला के नजदीक के गांव में पहुंचे हैं। यहां वे एक विपासना केंद्र में मेडिटेशन का कोर्स करेंगे और इस दौरान टीवी, मोबाइल, अखबार और पेजर, इन सभी चीजों से दूर रहेंगे।
इस तरह वो पहले भी एक बार छुट्टी पर जा चुके हैं।
जी, मोदी जी की,
बिल्कुल
जी, उन्होंने कहा था। उन्हें अखबार में छपी एक अन्य खबर है, लोकसभा में ट्रांसजेंडर यानी किन्नर समुदाय के लिए अलग पहचान और उनका उत्पीड़न करने वालों के लिए सजा के प्रावधान संबंधी विधेयक का, जिसे पेश किया गया है। और एक बड़ी ही मज़ेदार या दिलचस्प खबर है दिल्ली वालों के लिए कि बारिश हुई नहीं और दिल्ली में सब्जियों के दाम जो हैं ये बढ़ जाते हैं। अंग्रेजी के अखबार दी पायनियर में छपी एक खबर के अनुसार उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा है कि देश की राजधानी में सब्जियों के होलसेल दाम 40% तक बढ़ गए हैं। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर है जिसमें कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा है कि बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार मामला एक राजनीतिक साजिश थी। उन्होंने कहा कि चुनाव करीब हैं और बेचैन विपक्षी दल सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकत कर सकता है। उनके इस बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है।
एक खबर का और जिक्र करूंगा जो कि दैनिक भास्कर की है और ये कहते हैं कि 6 घंटे वेटिंग का गुस्सा और बंगाल से हटेगा वेस्ट, और अगर वेस्ट बंगाल में से हट जाएगा तो वो जो 28वें पायदान पर आता है तो वो सीधे 4th नंबर पर आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी आपका। भारतीय रेल दिल्ली मुंबई मार्ग पर टाल्गो ट्रेन का परीक्षण कर रही है, जिसे कि सेमी बुलेट ट्रेन भी कहा जा रहा है। ये ट्रेन आम ट्रेनों की तुलना में तेज रफ्तार से चलती है और इस सप्ताह से दिल्ली मुंबई के बीच का सफर 4 घंटे घट जाएगा। कल पहली टाल्गो ट्रेन मुंबई पहुंची। बारिश के चलते ये ट्रेन मुंबई में लेट जरूर हो गई, लेकिन अपने सफर के ज्यादातर हिस्से में ये तय समय पर ही चलती रही। पूरा ब्यौरा सुनिए अश्विन अघोर से।
मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना जब पूरा होगा तब होगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली और मुंबई के बीच सेमी बुलेट ट्रेन चलने के आसार बन रहे हैं। दिल्ली और मुंबई के बीच की 1384 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन 12.5 घंटों में पूरी करेगी। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस को यह दूरी तय करने के लिए 16 घंटे लगते हैं। पहले परीक्षण के लिए ट्रेन सोमवार शाम 7:55 पर दिल्ली से रवाना हुई और मंगलवार सुबह 11:40 पर मुंबई सेंट्रल स्टेशन पहुंची। पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी रविंद्र भाकर ने बीबीसी को बताया,
कुछ इसके 3 फेज में ट्रायल्स प्लान किए, तो 2 फेज ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुके हैं। तीसरा फेज का ये फर्स्ट ट्रायल था जो 30 KMPH से ये दिल्ली से गाड़ी चली थी और बॉम्बे इसका शेड्यूल 10:10 तक पहुंचना था, लेकिन सूरत तक गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम थी, लेकिन सूरत के ग्राउंड में काफी तेज बारिश की वजह से ट्रैक प्रभावित था और कई जगह पानी भरा हुआ ट्रैक था, उस वजह से गाड़ियों के आगे बंचिंग थी, तो आगे क्लियर पाथ नहीं था। सूरत में गाड़ी डिटेन हुई थी और काफी के बाद में बॉम्बे सेंटर लगभग 1.5 घंटा देरी से पहुंच पाई।
स्पेन में बनी इस टैल्गो ट्रेन की औसत रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। इस ट्रेन की वजह से दिल्ली और मुंबई के बीच सफर में 4 घंटे की कमी आएगी। यह ट्रेन एल्यूमिनियम से बनी है और वजन में काफी हल्की है, यही कारण है कि रफ्तार में तेज होने के साथ ही यह घुमावदार रास्तों पर आसानी से दौड़ती चली जाती है। इतना ही नहीं, हल्की होने के कारण इसमें ईंधन की खपत भी कम होती है। मुंबई और दिल्ली के बीच का रेल मार्ग काफी घुमावदार रास्तों से भरा है।
तो फाइनल फेज ऑफ ट्रायल्स है, ये लगभग 10-15 दिन में पूरा हो जाएगा। उसके बाद RDSO जो है रेलवे का डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो ये ट्रायल्स कर रहा है स्पेनिश टीम के साथ में, वो अपना रिपोर्ट्स वगैरह बनाकर रेल मिनिस्ट्री को देंगे। बाद में रेल मंत्रालय इसका आगे डिसीजन लेगा कि कैसे करना है, कब इंडेक्स करना है, किस तरह।
बुलेट ट्रेन को चलाने का खर्च बहुत ज्यादा है, उसकी तुलना में टैल्गो ट्रेन को चलाना सस्ता होगा। इसी महीने में 3 और परीक्षण होने हैं जिनमें ट्रेन को अलग अलग रफ्तार पर चलाया जाएगा। 4 परीक्षण सफल रहे तो ट्रेन को भारतीय रेल के बेड़े में शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी यह तय नहीं है कि यह ट्रेन पूरी तरह से बनी हुई स्पेन से आएगी या फिर इसे यहीं भारत में बनाया जाएगा। अश्विन अघोर, BBC, मुंबई।
ओडिशा सरकार ने किन्नरों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। फिलहाल जेल में वार्डन के पद पर उनकी नियुक्ति की जा रही है। वैसे तो यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है, लेकिन इसे लेकर किन्नरों में खूब उत्साह है। सरकार ने उनकी योग्यता के लिए पुरुष और महिलाओं को मिलाकर मापदंड तैयार किए हैं। ओडिशा से सुब्रत कुमार पति की रिपोर्ट।
शादी ब्याह में ताली बजाकर नाचते और रेलगाड़ियों में पैसा मांगते हुए नजर आने वाले किन्नर अब ओडिशा के जेल में सुरक्षा भी करेंगे। किन्नरों को मुख्य धारा में शामिल करने और उन्हें स्वाभिमान के साथ जीने की आजादी देने के लिए ओडिशा सरकार ने ये खास कदम उठाने का फैसला किया है। पुरुष और महिलाओं की तरह किन्नर भी जेल की सुरक्षा में तैनात होंगे। देश में इस तरह का कदम उठाने वाला ओडिशा पहला राज्य होगा। सर्वोच्च अदालत से मिले निर्देशों के बाद सरकार ने ये पहल की है। जेल में नौकरी पाने के लिए किन्नरों को पहले अन्य वर्गों की तरह ही कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की परीक्षा में पास होना पड़ेगा। राज्य के जेल महानिरीक्षक अरुण कुमार रॉय ने BBC को बताया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रांसजेंडर ग्रुप के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। जेल वार्डन का पोस्ट अभी खाली है, इसलिए यहाँ अब ये लोग भर्ती होंगे। भविष्य में भी इनको अलग अलग नौकरी में नियुक्ति मिलेगी। उड़ीसा में लगभग 20,000 किन्नर रहते हैं। इनमें 2,000 से 2,500 किन्नर शिक्षित हैं। इन पढ़े लिखे किन्नरों को सरकार की इस पहल का फायदा मिलेगा। राज्य में अशक्त लोगों की सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बनाए गए आयोग SSEPD के सचिव नितिन चंद्रा ने कहा कि अब किन्नरों को मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
ये जेल वार्डर का पोस्ट कुछ खाली है, रिक्रूटमेंट करना है, तो रिक्रूटमेंट करने के लिए हमारे जो सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उनके थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, तो उनके रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म में दैट जेंडर कैटेगरीज आर यूजुअली प्रोवाइडेड एज मेल एंड फीमेल, सो वी हैव टोल्ड देम दैट यू प्लीज इंक्लूड ट्रांसजेंडर आल्सो एज अ जेंडर कैटेगरी, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, सो नाउ द फील्ड इज ओपन फॉर एवरीबॉडी, फॉर मेल फीमेल एंड फॉर ट्रांसजेंडर।
शारीरिक मापदंडों के मामले में किन्नरों को महिलाओं के वर्ग में शामिल किया गया है। किन्नरों को भी सरकार की इस कोशिश भारी है और उन्होंने इसके प्रति उत्साह दिखाया है। भुवनेश्वर के ट्रांसजेंडर सुरक्षा ट्रस्ट के मुख्य किन्नर मेनका ने सरकार की इस कदम की सराहना की है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि सरकार पढ़ाई लिखाई से जुड़ी योग्यता के मामले में थोड़ी छूट दे तो ज्यादा किन्नर इसका लाभ ले सकेंगे।
आमे संग्राम करछु समाज रे मुख्य स्रोत रे शामिल हेबा पई सामाजिक मंगोली का काम आदि करछु।
हम समाज के मुख्य स्रोत में शामिल होने के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। शुभ कार्यों में हमें याद किया जाता है और समाज अगर हमें ये मौका दे रहा है तो हम उसका लाभ लेंगे। मैंने बच्चों को फॉर्म भरने के लिए कहा है, उनका भी आग्रह देख रहा हूँ।
बहुत खुशी लगुछि जे पिला पार्टिसिपेट करछन देखिबा पिलांकर हृदय मन करछन दिला खाद्य लगुछि जे देखिबा हमरो।
उड़ीसा में 90 जेल हैं और यहां 250 वार्डन की पद खाली है। किन्नरों को सरकारी सेवाओं में जगह मिलने लगी तो उनमें पढ़ाई लिखाई को लेकर भी उत्साह जागेगा। आने वाले दिनों में शायद कुछ और नौकरियों में भी किन्नरों को जगह मिले। सुब्रत कुमार पति, BBC भुवनेश्वर।
तो जैसा कि आपने सुना, ओडिशा सरकार किन्नरों को मुख्य धारा में शामिल करना चाहती है। कार्यक्रम में अब बात करते हैं खेल समाचारों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चांदना। सबसे पहले बात क्रिकेट की। वेस्ट इंडीज में जारी 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के बाद भारतीय टीम अमेरिका के फ्लोरिडा में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 T20 मैच खेलेगी। दोनों T20 सेंट्रल बोर्ड रीजनल पार्क में 27 और 28 अगस्त को खेले जाएंगे। BCCI और वेस्ट इंडीज बोर्ड के सदस्यों ने अमेरिका में क्रिकेट मैच के लिए आपस में चर्चा की थी। वेस्ट इंडीज बोर्ड ने इसके बाद अमेरिका के साथ बात को आगे बढ़ाया। फ्लोरिडा में 2010 में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले खेले थे, जबकि 2012 में वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रिकेट मैच खेला था। एजबेस्टन में आज से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में यदि पाकिस्तान को वापसी करनी है तो उनके बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इंग्लैंड ने दूसरा टेस्ट मैच 330 रनों से जीतकर 4 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली थी। इससे पहले पाकिस्तान ने लॉर्ड्स में पहला टेस्ट मैच 75 रन से जीता था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी सलामी जोड़ी के प्रदर्शन को लेकर है, क्योंकि मोहम्मद हफीज और शान मसूद टीम को अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहे हैं। उधर शॉटपुट में एथलीट इंद्रजीत सिंह के बी नमूने का टेस्ट भी प्रतिबंधित पदार्थ का पॉजिटिव पाया गया है, जिसके कारण उनकी रियो ओलंपिक में भाग लेने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। 28 वर्षीय इंद्रजीत का ए नमूना 25 जून को प्रतिबंधित स्टेरॉइड एंडोस्टेरोन और एटियोकोलिनोन का पॉजिटिव पाया गया था, और सूत्रों ने बताया है कि अब उनका बी नमूना भी जांच में इसी पदार्थ का पॉजिटिव पाया गया है। अब सुनवाई के लिए इंद्रजीत नाडा की अनुशासनात्मक पैनल के समक्ष प्रस्तुत होंगे। इंद्रजीत को वाडा की नई संहिता के अंतर्गत 4 साल के बैन का सामना करना होगा। वो 5 अगस्त से होने वाले रियो ओलंपिक से भी लगभग बाहर हो गए हैं। वही नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के आरोप मुक्त होने के बाद पहलवान नरसिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मंगलवार को नई दिल्ली में नाडा द्वारा डोपिंग के आरोपों से बरी किए जाने के बाद यादव ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मुलाकात के बाद नरसिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे और बेहतर परफॉर्म करने को कहा है और भरोसा दिलाया है कि उनके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। वही टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और टेबल टेनिस की टीम रियो ओलंपिक के खेलगांव पहुंच गई है। सानिया मिर्जा ओलंपिक खेलगांव पहुंचने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। अपने तीसरे ओलंपिक में खेल रही सानिया मॉन्ट्रियल से यहां पहुंची है, जहां वो रॉजर्स कप में हिस्सा ले रही थी। सानिया महिला युगल में प्रार्थना थुम्बारे के साथ जोड़ी बनाएंगी, जबकि मिश्रित युगल में रोहन बोपन्ना के साथ खेलेंगी। महिला युगल मुकाबलों की शुरुआत 6 अगस्त, जबकि मिश्रित युगल मुकाबलों की शुरुआत 10 अगस्त से होगी। यही नहीं, भारत की टेबल टेनिस टीम भी खेलगांव पहुंच गई है, जिसमें शरद कमल, सौम्यजीत घोष, मोमा दास और मोनिका बत्रा शामिल है।
और यहीं पर आपको बता दें कि जमैका में खेले जा रहे भारत वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट के चौथे दिन बारिश और तूफान के चलते भारत मजबूत स्थिति में आ गया। चौथे दिन की शुरुआत करते हुए वेस्टइंडीज ने बल्ला जरूर संभाला, लेकिन तूफान के चलते सिर्फ 16 ओवर तक ही मैच हो सका। इतने वक्त में भारत की दूसरी पारी के 256 रनों का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज के खिलाड़ी 4 विकेट खोकर 48 रन ही बना सके। और अब कार्यक्रम में से पहले आपसे विदा लें, मुख्य समाचार फिर से सुनते हैं।
BBC समाचार। भारतीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह सऊदी अरब में फंसे हुए 10,000 से अधिक भारतीय कामगारों की मदद के लिए जेद्दा पहुंच रहे हैं। सीरिया के एक शहर सराकेब में एक डॉक्टर और बचाव कर्मियों का कहना है कि वहां पर कथित तौर पर क्लोरीन गैस से भरे बैरल गिराए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा है कि वे इस पद के लिए योग्य नहीं हैं। लीबिया में सुरक्षा बलों का कहना है कि बेनगाजी शहर में एक कार बम धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। BBC समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। एक घंटे बाद विश्व भारती कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होने वाले हैं। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।